दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ। एरिक भाई, सुधा दीदी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुधा दीदी, ओम शांति। मुझे भी आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और चलिए सभी साथ मिलकर उस स्वर्णिम युग को करीब ले आते हैं और उसको एक वास्तविकता बना देते हैं। एरिक भाई, बिल्कुल वही एक ख्याल है कि सारा ब्राह्मण परिवार मिलकर अपने भविष्य का चिंतन करें। हम नई दुनिया में जाएंगे, बाबा ने इस बारे में बताया है। बाबा ने मुरलियों में स्वर्णिम युग के कई पहलुओं के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन जब हम अपने आसपास की हालत देखते हैं, माया की दुनिया देखते हैं, बड़े बड़े शहरों को देखते हैं, तो एक वास्तविकता से दूर की बात लगती है। तो इससे पहले कि हम स्वर्णिम युग में जाएं, बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। तो चलिए आपसे इसी प्रश्न के साथ आरंभ करते हैं। आप बाबा के साथ बहुत लंबे समय से हैं, तो शुरुआत के दिनों में जब आपको स्वर्णिम युग का ये विचार बताया गया था, तो आपने स्वर्णिम युग की खोज कैसे की? क्या आप ट्रांस में गए थे, या आपको कुछ साक्षात्कार हुए थे, या कोई सूक्ष्म अनुभव हुए थे? आपके लिए किस प्रकार ये बात आगे बढ़ी? सुधा दीदी, मेरे साथ बहुत रोचक बातें हुई। जब मैं छोटी बच्ची थी, तो तब भी मैं इस बात को सोचती थी कि मैं इस संसार में पैदा क्यों हुई हूँ, और मैं सोचती थी कि शायद गलती से मैं यहाँ पैदा हो गई हूँ। मुझे तो वहाँ पैदा होना चाहिए था जहाँ कृष्ण पैदा हुआ है, और मैं श्री कृष्णा को बहुत प्यार करती थी। मैं अपने सपने में कृष्ण के साथ खेलती थी, और हमारे घर में, जैसा कि हर हिंदू परिवार में होता है, एक मंदिर बना हुआ था जिसमें बहुत सारे देवताओं की मूर्तियां थी और हमें सबकी पूजा करने के लिए कहा गया था, लेकिन मेरे दिल से मैं कृष्ण की पूजा करती थी। तो जब मैं 14.5 साल की थी और सेंटर पर मुझे स्वर्णिम युग के बारे में बताया गया, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, कुछ भी काल्पनिक नहीं था। मेरे लिए वही वास्तविकता थी और ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे कोई साक्षात्कार नहीं हुए थे, लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया कि ऐसा ही होना चाहिए। और अब जब मैं स्वर्णिम युग के बारे में सोचती हूँ, तो पहली बात जो मेरे सामने आती है, हंसते हुए, संतुष्ट, उत्कृष्ट, विनम्र देवताएं एक सुंदर बगीचे में फूलों और पंछियों के साथ, मैं वह बहुत स्पष्ट देखती हूँ कि हाँ, वही स्वर्णिम युग होगा। मैं बहुत अधिक महल या सिंहासन नहीं देखती हूँ, परंतु मैं देवताओं की यह प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक स्थिति देखती हूँ, और बहुत स्पष्ट अनुभव होता है कि वे एक दूसरे को केवल दृष्टि से समझ पा रहे हैं, और अगर वे कुछ शब्दों का उच्चारण करते भी हैं, तो वे शब्द बहुत सौम्य और मीठे होते हैं। एरिक भाई, लेकिन क्या कभी कभी आपको लगता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर तस्वीर है जो हमारे सामने आती है और बाबा ने इस बारे में बताया भी है, लेकिन 2500 साल बहुत लंबा समय है, इतना सूक्ष्म रहना और बस दृष्टि से बातचीत करना, और लगता है वो बहुत लंबी दृष्टि होगी 2500 साल तक। सुधा बहन, नहीं, ऐसा नहीं। निसंदेह हम स्कूल जाएंगे, हम पढ़ाई करेंगे, पुष्पक विमान में जाएंगे और वहाँ व्यापार भी होगा। हाँ, यहाँ के प्रकार का व्यापार नहीं होगा, महल भी बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वे कहीं ऊपर से आ जाएंगे, निसंदेह इस प्रकार के कार्यकलाप वहाँ चलते रहेंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि उतने ज्यादा नहीं होंगे जितने यहाँ हैं, कि किसी मरीज को देखने जाना, किसी को मुबारकबाद देने जाना, क्योंकि वहाँ सदा ही प्राकृतिक रूप से एक उत्सव की अवस्था होगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि 2500 साल बहुत लंबा समय नहीं होगा। एरिक भाई, हाँ, समय के बारे में हमें इतनी जागरूकता नहीं होगी। सुधा बहन, हाँ, बिल्कुल यही बात है। आज के जमाने में भी जो खुशी के पल होते हैं, बहुत जल्दी बीत जाते हैं। तो यह परस्पर संबंधित बात है। हम ये बात नोट नहीं करेंगे कि बहुत लंबा समय है, बल्कि यह हमारी प्राकृतिक अवस्था होगी। एरिक भाई, हाँ, मुझे लगता है कि हम सभी को एक विश्वास है कि हमारा भविष्य स्वर्णिम युग में होगा, और सवाल है दृष्टि से सृष्टि को लेकर, यह कैसे होगा, क्योंकि आप स्वयं पर बहुत वर्षों से पुरुषार्थ कर रही हैं। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो अपने आप पर बहुत वर्षों से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सवाल है कि जो हमारी चेतना है और हमारे संस्कार हैं, वे किस प्रकार तैयार होंगे उस स्वर्णिम युग में जाने के लिए। तो इस पर आपका क्या विचार है? सुधा बहन, मुझे बाबा की वो मुरली याद आती है जब बाबा कहते हैं कि जब भी कोई संसार में शरीर छोड़ता है तो वे लोग कहते हैं कि वह स्वर्ग सिधार गया, लेकिन वे वहाँ जाने का कोई पुरुषार्थ नहीं करते, और आप वहाँ जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और उस समय से ही मैं सोच रही हूँ कि क्या वो पुरुषार्थ है, क्या वो विशेष पुरुषार्थ हमें करना है जो हमें स्वर्णिम युग में ले जाएगा। वर्तमान समय मैं कुछ निष्कर्ष पर पहुंची हूँ। उदाहरण के लिए उनमें से एक है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वहाँ की गतिविधियाँ बहुत आहिस्ता और सौम्य होती हैं। आपको आवाज भी सुनाई नहीं देती, बिल्कुल आवाज नहीं होती। तो अगर हम यह पुरुषार्थ करें कि सब बातें जो भी हम करें बहुत आहिस्ता से सौम्यता से करें, जैसे उठना बैठना सब कुछ बहुत गौरवशाली रॉयल तरीके से हो, चलना, दरवाजा खोलना, दरवाजा बंद करना, यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि देवता ऊंची आवाज में हंसते भी नहीं हैं। तो अगर हम देवताओं के जीवन के इस आयाम को अपने जीवन में समाहित कर लें, इस ब्राह्मण जीवन में, तो इसका अर्थ है हम वो संस्कार अभी बना रहे हैं, तो हम उस सौम्यता के, शीतलता के संस्कार अभी बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक तैयारी है। और दूसरी बात जो मैं महसूस करती हूँ कि हम सभी योग करते हैं, लेकिन योग का अर्थ है भगवान के नजदीक आना, बाबा के नजदीक पहुँचना। और जब हम बाबा के और नजदीक आते जाते हैं, तो इसका अर्थ है हम उनकी विशेषताओं के नजदीक आ रहे हैं, उनके संस्कारों के नजदीक आ रहे हैं। एक ब्राह्मण बाबा के नजदीक पहुँचता है, दूसरा पहुँचता है, तीसरा समीप पहुंचता है, तो सभी बाबा के समीप पहुंचते हैं। और इसका अर्थ है हम सभी एक दूसरे के समीप भी पहुंच रहे हैं। और जब हम एक दूसरे के समीप हैं, तो इसका अर्थ है हम एक दूसरे के संस्कारों में भी समीप हैं, अपनी विशेषताओं में भी समीप हैं। तो हम एक दूसरे के इतने समीप आ जाते हैं, एक दूसरे को समझने में समय नहीं लगता। हमें एक दूसरे को समझने के लिए बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम एक दूसरे को दृष्टि से, इशारों से, विचारों से समझ जाएंगे। और अगर बोलने की आवश्यकता पड़ी भी तो हमें बहुत कम शब्द बोलने पड़ेंगे, मैं ऐसा महसूस करती हूँ। तो हमारा पुरुषार्थ दो स्तर पर है। एक है सूक्ष्म स्तर, जब हम बाबा के नजदीक पहुँचते हैं, और दूसरा हमारे कर्मों में, जब हम अपने कर्मों में वह शीतलता और सौम्यता ले आते हैं। एरिक भाई, हाँ मैं जानता हूँ आप दादियों के बहुत करीब हैं और उनको बहुत करीब से देखते रहते हैं। तो आप ये सब क्या दादियों में देखते हैं? क्या आपने इस बात को अनुभव किया है कि दादियों में इस प्रकार का परिवर्तन आया है? सुधा दीदी, हाँ, जब भी मैं बहुत बार फोटोग्राफ्स देखती हूँ। हाल ही में मैंने दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणी जी का एक फोटोग्राफ देखा। वो दोनों एक बिस्तर पर हैं और ऐसा लगता है कि दादी प्रकाशमणि की तबीयत शायद ठीक नहीं है, और दीदी उनको देखने के लिए गई हैं। और जिस प्रकार वे एक दूसरे को देख रहे हैं, वह सुंदर मुस्कान दोनों के चेहरे पर है, बस वह मुस्कान ही बहुत कुछ कह जाती है। तो दादियों से मुझे इस बात का अनुभव होता है। बहुत बार मैंने दादी प्रकाशमणि को भी देखा है और दादी गुलजार को भी, और अभी मैं बहुत बार दादी गुलजार और दादी जानकी जी को देखती हूँ। केवल दादियाँ नहीं, जब हम दादियों के पास जाते हैं, उदाहरण के लिए दादी गुलजार, उनके पास बैठें और उनसे दृष्टि लें, और उसी से आपको बहुत बातें समझ में आ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक दिन वास्तविकता हो जाएगी। जैसे बाबा रोज रोज कहते हैं कि हमें बहुत अभ्यास करना है आत्म अभिमानी बनने का, यही बीज है, यही आधार है। एरिक भाई, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ कैसे होगा? हम इस ओर ऐसे ही देखते हैं जैसे बाबा हमें बता रहे हैं पिछले 80 सालों से कि सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, और आपके पास अधिक समय नहीं है, लेकिन फिर भी 80 साल बीत गए और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कई लोग बहुत सारे सालों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उस अवस्था के नजदीक नहीं है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से हमें कौन सी युक्तियाँ प्रयोग में लानी चाहिए जिससे हम उस ऊंची अवस्था में पहुंच जाएं और टाइम पर पहुंच जाएं? सुधा दीदी, हाँ भाई, मैं सोचती हूँ कि वैसे तो ब्राह्मण परिवार स्वर्णिम युग के बारे में बात करता है, लेकिन जैसा कि आपने बिल्कुल शुरुआत में कहा, ये एक विश्वास का सवाल है। अंदर से मुझे कितना दृढ़ निश्चय है कि हाँ, मुझे स्वर्णिम युग में जाने की तैयारी करनी है, मुझे स्वर्णिम युग में जाने की तैयारी करनी है, मुझे वहाँ जाना है, और ये दृढ़ निश्चय है। मुझे लगता है कि ये दृढ़ता अभी आत्मा के अंदर गहराई तक नहीं गई है और इसी कारण हम इतने करीब नहीं हैं, और इसीलिए कुछ संस्कारों की टक्कर है, ये बात वो बात और बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन क्योंकि ये बाबा का कार्य है और ये बात सत्य है कि बाबा इस बारे में कुछ करेंगे और कुछ आत्माएं प्रयास करेंगी, जैसे ये वेबिनार अभी आरंभ हुआ है, शायद इससे आत्मा को एक फटकार मिलेगी कि हम 30, 40, 50 सालों से स्वर्णिम युग की बातें कर रहे हैं और इस पल में मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, इस पल में कितनी पास कितनी दूर हूँ। शायद इससे चेतना में कुछ बड़ा बदलाव आएगा, और विधियों के बारे में मैं सोचती हूँ, और जिसका मैंने अभ्यास किया है शायद बहुत बार नहीं, और मुझे ये बहुत पसंद भी है। तो जब आप लक्ष्मी नारायण की तस्वीर के सामने बैठते हैं शांति से और बस उनको देखते रहिए, देखते रहिए और देखते रहिए, और आप महसूस करेंगे कि वो मुस्कान आपके चेहरे पर आ रही है और आप उनके साथ समीपता का अनुभव करने लगते हैं। और दूसरी तस्वीर जो मेरे मन के सामने आ रही है वह है त्रिमूर्ति, जो कि दोनों बातों के बारे में बताती है, हमारा मार्ग और हमारा लक्ष्य, पुरुषार्थ और इनाम। और अगर हम इन दोनों तस्वीरों के सामने बैठते हैं तो मुझे लगता है ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हम में स्वर्णिम युग के प्रति वो आकर्षण पैदा होगा, और मैं उस स्वर्णिम युग की ओर अगर आकर्षित हूँ और मेरे अंदर वो गहरी इच्छा है वहाँ जाने की और मेरा दृढ़ संकल्प है, तो ये परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। और एक बार ये आरंभ हो गया तो फिर अधिक समय नहीं लगेगा। एरिक भाई, आपको लगता है कि स्वर्णिम युग में जाने की उस दृढ़ता को हमने कहीं खो दिया है, क्योंकि हमने ब्राह्मण जीवन के लक्ष्य से एकाग्रता को थोड़ा बदल दिया है? बहुत सारे विदेशी जो शुरुआत में स्वर्णिम युग को लेकर बहुत उत्साहित थे, देवताएं, मोर, विमान, लेकिन अब उनको वह इतना दिलचस्प नहीं लगता, क्योंकि कुछ वास्तविक नहीं लगता है, कल्पना सी लगती है। बस हम ध्यान कर रहे हैं अभी अपनी पूर्ण अवस्था को पाने का और सेवा पर बहुत ध्यान एकाग्र कर रहे हैं, और हमारे ब्राह्मण जीवन का ये बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। और अव्यक्त मुरलियां भी यही बताती हैं, बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है। शायद उस स्वर्णिम युग में जाने का वो रास्ता, उस ट्रैक को हमने कहीं न कहीं खो दिया है। क्या ये संभव है? सुधा दीदी, हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद ड्रामा में इस बात की अभी आवश्यकता है। बाबा ने कह दिया है, जब तक आप पवित्र पावन नहीं बनते तब तक ना तो आप परम धाम जाने के लायक हैं, ना ही स्वर्णिम युग में। तो हमें सेवाओं में व्यस्त करके और हमारा ध्यान संबंधों की ओर आकर्षित करके, कर्मातीत अवस्था के बारे में बात करके और संपूर्णता आदि, तो बाबा अंततः हमें तैयार करना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए, जब हम अपनी पवित्रता की 98% तक पहुंच जाएंगे तब परिवर्तन आरंभ होगा, तब बदलाव आएगा और हम अपने संपूर्ण और असली स्वरूप की ओर जाना आरंभ होंगे, जो कि स्वर्णिम युग की अवस्था है। मुझे नहीं लगता कि बिना कारण से ये सब तैयारियां हो रही हैं। ये स्वर्णिम युग के लिए ही तैयारियां हैं। हमें ये करना ही है, शूद्र से देवता बनना है। अभी तक तो हम ब्राह्मण ही बन रहे हैं, जब हम पक्का ब्राह्मण बन जाएंगे ब्रह्मा बाबा की तरह, तो वह अवस्था होगी नशे की कि हम देवता बन रहे हैं। एरिक भाई, सुधा दीदी, आपने शुरुआत में ही कहा था कि ऐसा लगता है हम गलत दुनिया में पैदा हो गए हैं, हम कृष्णा के साथ पैदा होना चाहते हैं, और अच्छी खबर यह है कि आप कृष्णा के साथ ही अपने अगले जन्म में पैदा होंगी। आपने ऐसा कोई विशेष पुरुषार्थ किया है जिससे आपको लगे कि हाँ, यह पुरुषार्थ करने से मैं अपने लक्ष्य के करीब होती जा रही हूँ? क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपके इस ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ को इस प्रकार सक्रिय किया हो? सुधा दीदी, आपका अर्थ स्वर्णिम युग के अनुभवों के बारे में है? एरिक भाई, कुछ ऐसा जो आपको अपनी स्वर्णिम युग की अवस्था के करीब ले जाए, स्वर्णिम युग के करीब ले जाए? सुधा दीदी, वास्तव में ऐसा हो रहा है। जब अभी आपका ये ईमेल मेरे पास आया कि ये वेबिनार हम करने वाले हैं, और वही समय था जब मैं इसी विषय के बारे में सोच विचार कर रही थी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना अद्भुत रहा होगा। और यही कारण है कि मैं एकदम से मान गई, समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं मान गई, क्योंकि मैंने स्वर्णिम युग के बारे में उससे पहले ही सोचना आरंभ कर दिया था। वैसे तो श्री कृष्णा को मैं बहुत प्यार करती हूँ, और अपने बचपन में मैं हमेशा चाहती थी कि मैं सदा उसके साथ रहूँ, और ये ज्ञान से पहले की बात है। लेकिन बाद में, जैसा कि आपने कहा कि ज्ञान में आने के बाद संगम युग का आनंद अधिक ले रही हूँ और स्वर्णिम युग के बारे में कम सोच रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं इसी बारे में, स्वर्णिम युग के बारे में ही सोच रही थी। मेरा विशेष अनुभव वो बाबा के साथ समीपता पर है, ताकि मेरे संस्कार बाबा के जैसे बन जाएं। देवताएं परमात्मा की रचना है, तो जब मैं बाबा के समीप होती हूँ, तो मैं बाबा के द्वारा देवता बनाई जा रही हूँ। एरिक भाई, ये बहुत रोचक बात है। तो समय भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी विशेष समय पर हम इस बारे में ध्यान एकाग्र करें। सुधा दीदी, हाँ बिल्कुल। और जहाँ तक अपनी गतिविधियों में सौम्यता, सरलता, शीतलता की बात है, तो मुझे लगता है कि वो मेरे अस्तित्व में है ही, और मैं कोशिश करती हूँ, या फिर कहीं कोशिश करने की बात नहीं, ये मेरे लिए बहुत नैसर्गिक, प्राकृतिक है कि कुछ भी करते हुए अधिक शोर शराबा नहीं करना, तो इस प्रकार की बातें। और जहाँ तक बाबा के साथ अपने संस्कारों की समीपता की बात है, तो वह मुझे लगता है कि जब से स्वर्णिम युग को अपनी स्मृति में अधिक रखना आरंभ किया है, तो बाबा के साथ वो समीपता, वो संस्कारों की समीपता आरंभ हो गई है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा के साथ जो योग है, जो सच्चाई है, वो प्राकृतिक बन जाती है। और दूसरी अवस्था जो आत्मा को प्राप्त होती है, वह है कि आत्मा गलती करने से पूर्णतया मुक्त हो जाती है, क्योंकि सत्यता के साथ योग है। और जब आत्मा गलती करने से मुक्त हो जाती है, तो हम जानते हैं कि स्वर्णिम युग वह युग है जहाँ कोई भी गलती नहीं होती, तो उस समय कर्मों में विशुद्धता आती है, और तब हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण, हर कर्म में संपूर्णता। जब कोई गलती नहीं और हम विशुद्धता की तरफ जाते हैं, तो यह विशुद्धता या यथार्थता हमें संतुष्टता की ओर ले जाती है, क्योंकि जो परिणाम है वह बहुत सकारात्मक है। और जब आप स्वयं से संतुष्ट होते हैं, तो दूसरे भी आपसे संतुष्ट होते हैं। आप प्राकृतिक रूप से बहुत खुश होते हैं और हर्षित होते हैं, और यह हर्षित मुक्ता ब्राह्मणों का एक प्राकृतिक स्वभाव बन जाता है, और स्वर्णिम युग नजदीक आता जाता है। एरिक भाई, मैं आपसे पूछने ही वाला था कि स्वर्णिम युग का आपका सबसे पसंदीदा पहलू क्या है, और आपने बताया कि सहजता और संतुष्टता। बहुत अच्छा सुधा दीदी। तो जब हम स्वर्णिम युग की अवस्था के बारे में सोचते हैं और अपनी इस वर्तमान अवस्था के बारे में सोचते हैं, तो रुकावट कहाँ है ताकि हम एक लंबा कदम उठाकर स्वर्णिम युग की ओर चले जाएं? सुधा दीदी, मुझे लगता है इसका उत्तर है कि हमारी पुरानी आदत है बार बार देह अभिमान में आने की, सेवा के क्षेत्र में हद की इच्छाएं, ब्राह्मणों के बीच में किसी प्रकार की प्रतियोगिता, यही हमारा रास्ता रोक रहा है। अगर मैं इस रुकावट को हटाना चाहती हूँ, तो मुझे आवश्यकता है कि मैं अपने साथ एकांत में बैठूं, स्वयं से बातें करूं और जैसा कि मैंने कहा कि स्वयं को विश्वास दिलाएं, हे आत्मा, आपको अभी स्वर्णिम युग में चलने की तैयारी करनी है। आप एक ब्राह्मण बन गए हो, आप बाबा के पास आ गए हो, किस लिए? क्योंकि आपका लक्ष्य है देवता बनना और विश्व परिवर्तन के इस कार्य में बाबा का मददगार बनना और स्वर्णिम युग की रचना करना। जैसे बाबा कहते हैं कि हमें सचमुच में हमें एकांत प्रिय बनना है, जो स्वयं से बातें कर सके, अंतर्मुखी बन सके, और इस अंतर्मुखता से उस प्रकार की प्राप्ति स्वयं को होगी, जैसे बाबा हमेशा कहते आए हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंतर्मुखी होता है वह सदा खुश और संतुष्ट रहता है, और जब हम वह करना आरंभ कर देते हैं तो ये सारी रुकावटें हट जाती हैं, विघ्न हट जाते हैं और हम आगे बढ़ने लगते हैं। एरिक भाई, बस आपको सुनने से ही लगता है कि हम मेडिटेशन की अवस्था में पहुंच रहे हैं, तो हम इसी बात को जारी रखना चाहेंगे। आप हमें मेडिटेशन का अनुभव कराएं, इसी विषय पर, अंतर्मुखता पर, आंतरिक स्थिति पर, संतुष्टता पर, आपसे ऐसे कुछ विचार मेडिटेशन में सुनना चाहेंगे। सुधा दीदी, हाँ जरूर। आने वाले स्वर्णिम युग को अपनी स्मृति में रखकर मैं अपनी यात्रा अपने घर से आरंभ करती हूँ।
फ्रॉम माई होम
मैं एक आत्मा हूँ। चमकता हुआ सितारा, हीरे की तरह चमकता हुआ,
लाइक ए डायमंड।
मैं पवित्र और शांत स्वरूप हूं। मैं भरपूर और संतुष्ट हूं।
कंटेंट
मैं मेरे घर में हूं, शांति की दुनिया में, अनंत प्रकाश। मैं प्रकाश हूं,
लाइट।
इस प्रकाश के घर से दूसरी अद्भुत दुनिया के लिए मैं अपनी यात्रा आरंभ करती हूँ।
टू अनदर ब्यूटीफुल वर्ल्ड
और मैं एक सुंदर
लवली
प्यारे संपूर्ण पवित्र शरीर में प्रवेश करती हूँ, जो कि मेरा वस्त्र है। मैं अपनी आंखें खोलती हूँ और अपने आसपास देखती हूँ। समान रूप से सुंदर आत्माएं अपने सुंदर वस्त्रों में वे सभी मुझे देखकर बहुत खुश हैं, मुझसे मिलकर बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूं। मैं मुस्कुराती हूं, वे भी मेरी ओर मुस्कुराते हैं। सौम्य और मृदु संगीत की आवाज चारों ओर आ रही है, चारों ओर प्रकाश फैला है। इतने सुंदर लोगों में से
ब्यूटिफुल बीइंग्स
एक मुझे अपने घर में ले जाते हैं। छुवन
इज सो प्योर,
बहुत कोमल,
सॉफ्ट
और वे नम्र है
एंड जेंटल.
मैं बिस्तर पर लेटी हूं, बस मुस्कुरा रही हूं. एक छोटा पंछी आता है और खिड़की पर बैठ जाता है मेरे बिस्तर के साथ में. ये छोटा पंछी मेरी ओर मुस्कुरा रहा है और मैं भी उसको देखकर मुस्कुरा देती हूं. अपनी खुशी का इजहार करने के लिए ये छोटा पंछी कुछ चलना फिरना आरंभ कर देता है, कुछ आवाजें करना आरंभ कर देता है और उसका चलना फिरना नाचने की तरह है. और जो आवाज है वह मधुर संगीत की तरह है. अपने इस छोटे मित्र के डांस का आनंद लेते लेते मेरी आंखें बंद हो रही हैं. मेरे चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान है और छोटा पंछी उड़कर दूर चला जाता है. ओम शांति.